भाव दीपिका लेक्चर नंबर 6 ओ सिद्धि ओ सिद्धि ओ सिद्धि स्वभाव विभाव परभाव को ज्ञाता सम्यक ज्ञान काकाधारकता सुपुनि नमो चित्त धरिध्यान। यह भाव दीपिका नामक जो शास्त्र है उसके रचनाकार है पंडित दीपचंद जी काश्रीवाल। उन्होंने 5 भाव संबंधी जो जीव के असाधारण भाव है बहुत विस्तार से चर्चा की है। 2 अधिकार हमने पढ़े हैं। पहले अधिकार में सामान्य भावों की चर्चा की और दूसरे अधिकार में पारिणामिक भाव अधिकार हुआ है। अब यहाँ तीसरे अधिकार में कर्माधिकार की चर्चा करेंगे। यहाँ मंगलाचरण हमने देखा था कल, अब यहाँ आगे पढ़ते हैं। अथ अनंतर कर्माधिकार लिखिए है जाते। अब कहेंगे कि जे 50 भाव है ते सर्व कर्म की सापेक्षता ते उत्पन्न है। पहले पारिणामिक भाव कहा था, वो तो जीव का स्वभाव है। अब ये सब पर्याय रूप भाव है तो उसमें कर्म की सापेक्षता, भले उसका उदय है, उपशम है, अक्षय है, जो कुछ है उसकी सापेक्षता यहाँ पाई जाती है। इसलिए कर्मनिका कछुयोग कथन करिए, कुछ उसके बारे में बताएंगे। सामान्य कर्म के मूल भेद 8 है। कर्म कहने से हम एक ही कहेंगे, सब मिलकर उसे कर्म कहा जाता है। उसके फिर हम मूल प्रकृति जिसको कहते हैं, ऐसे भेद है 8। और उसके और भेदों के भेद करेंगे तो 168, हमेशा हम 148 गिनते हैं। यहाँ जो वर्ण रस गंध स्पर्श के 20 भेद बताए हैं वो शुभ भी और अशुभ भी ऐसे 2 प्रकार के हैं, इसलिए 148 जो हम गिनते थे उसमें 20 बढ़ गए तो 168 हो गए। वहाँ संख्यात लोक प्रमाण है, यानी बहुत एकदम विस्तार से उसके भेद 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 करते जाएंगे तो असंख्यात लोक प्रमाण सो ही कहिए है। जीव को विशेष जानन रूप जो ज्ञान भाव ताको आवरे घाते अभाव करे सो ज्ञानावरण कर्म है। क्या कहते हैं? जीव का स्वभाव भाव है कौन सा? जानना जानना जानना, जानन भाव उसका ज्ञान भाव है। कैसा? विशेष जानन रूप ज्ञान, उसी को कहते कि विशेष जानना, उसको ज्ञान कहते हैं, यानी विशेष अवलोकन, सामान्य प्रतिभा सामान्य अवलोकन उसको दर्शन कहते हैं। तो इसको विशेष ज्ञान रूप इसको ज्ञान भाव का उसका घात करता है। ज्ञान का तो घात नहीं होता, ना गुण का होता है ना पर्याय का होता है, परंतु जीव का ज्ञान कितना है और क्या क्या जानता है तो 100 पर सबको जानता है और विश्व में जितने पदार्थ है उन सबको एक समय में युगपत जानता है, इतना तो सामर्थ्य है। परंतु सामर्थ्य पर्याय में प्रकट नहीं है। क्यों नहीं है? जीव के अपने स्वयं की योग्यता से नहीं है। उस समय सामने कर्म का कौन सी अवस्था पाई जाती है या कर्म कौन से कर्म उसमें निमित्त होता है तो कहते ज्ञान आवरण कर्म। तो उसमें कहेंगे कि जीव के ज्ञान भाव को रोकने वाला, आवरण डालने वाला या घातने वाला कौन सा है तो ये ज्ञान आवरण कर्म है, उसको कहेंगे वो ज्ञान गुण का वो प्रतिपक्षी कर्म है। ये हम नाम देख रहे हैं, अभी हमने ज्ञानावरण कर्म नाम देख रहे, ऐसे 8 नाम देखने जा रहे। बहुरी सामान्य अवलोकन रूप जो जीव को दर्शन भाव, पहले ज्ञान भाव कहा था, ये दर्शन भाव उसका अर्थ क्या है? सामान्य अवलोकन, जिसको हम कहते हैं जानना देखना। ये देखना यानी आंखों से देखने की बात नहीं है, जहाँ जहाँ ज्ञान की पर्याय होती है अभी हमारी क्षोभ ज्ञानियों की, तो उसके जानने के पहले सामान्य अवलोकन होता है विदाउट डिफरेंशिएटिंग, तो उसको कहेंगे दर्शन। केवल ज्ञानी के दोनों युगपत होते हैं, जानना भी और देखना भी। केवल दर्शन और केवल ज्ञान युगपत एक समय में होता है। तो ये जो जीव का भाव है कौन सा, दर्शन भाव, ताको घाते, उसका जो घात करता है, उसको जो आवरण डालता है, ये भाषा है वो निमित्त की। ये जड़ जो है कर्म जड़ है, और वो जीव का घात करे ऐसा तीन काल में नहीं होता है, फिर भी ये कथन पद्धति होती है। तो ये दर्शनावरण कर्म है। बहुरी जीव के श्रद्धान और चारित्र गुणों को घाते सो मोह कर्म है। ये विपरीतता लाता है, घात करता नहीं, ये विपरीतता लाता है। ज्ञान और दर्शन में थोड़ा तो ज्ञान प्रकट है, थोड़ा तो दर्शन प्रकट है, परंतु यहाँ मोहनीय कर्म में क्या होता है, श्रद्धान को विपरीत बनाता है और चारित्र गुण को भी विपरीत बनाता है। श्रद्धा की विपरीतता क्या है, तो मिथ्या मोह, और चारित्र की विपरीतता राग द्वेष के परिणाम, ये दोनों की विपरीतता होती है। बहुरी जीव के उत्साह यानी वीर्य यानी पराक्रम को घाते है सो अंतराय कर्म है। यानी जीव का जो उद्यम है, जो बल है, तो यहाँ उत्साह नाम दिया उसको। ये चार कर्म तो जीव के गुण को घाते है, ताते घातिया कर्म, इसका डायरेक्ट इफेक्ट, इसका निमित्त संबंध किसके साथ है कि जीव के गुणों के साथ, यानी उसकी जो पर्याय होती है उसके साथ इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और अवशेष चार कर्म जीव के गुण को नहीं घाते हैं, जीव के गुण के साथ उसका कुछ संबंध नहीं है, उसका घात नहीं करते, तो उसको अघातिया कहेंगे। जो घात करते उसको घाती कर्म, और जो घात नहीं करते वो अघातीय कर्म। बहुरी सुख दुख की कारण बाह्य सामग्री मिलावे, ये कौन सा सुख दुख है, तो इंद्रिय जनित सुख दुख, तो उसके जो बाह्य निमित्त कारण है उसकी प्राप्ति होना, सो वेदीय कर्म है। एक्चुअली कोई पदार्थ है उसके कारण आते या जाते नहीं है, जैसे ये पंखा घूम रहा है, कौन से कर्म के कारण, साता वेदनी के असाता का वेदनी है, वो अपने कारण घूम रहा है, क्योंकि वो साता के कारण घूमता होगा, तो किसी को अभी नहीं अच्छा लग रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है, तो किसी के असाता का हृदय है, किसी के साता का, तो उसका लक्ष्य करके हम दुख रूप कल्पना करते हैं, तो उसके हमारे असाता का हृदय ऐसा कहेंगे, तो वेदनी कर्म है। बहुरी प्राप्त वही गति विषय अवस्थान राखे सो आयु कर्म है। क्या कहा, जो हमें जो कोई भव जो कोई गति मिली है उसमें से छूटने दे देता, अवस्थान राखे ने उसी में रोका ही रहता है, वो क्या है, आयु कर्म। उसको तो शास्त्र में वो घोड़े की उपमा दी, पहले के जमाने में वो लकड़े का ऐसे बहुत ऐसा होता था, उसके अंदर पैर डाला जाता है और दोनों साइड से ऐसा बंद करके पैक कर देते, तो जो कैदी है वो भाग नहीं जा सके इसलिए, और उसको बांध के रखते थे। तो ये आयु कर्म ऐसा है, और हमने ऐसा उसको माना क्या। हाँ बोलो, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल क्यों नहीं करते, किसके लिए ये प्रश्न क्यों आया।
अगर ये पंखा घूम रहा है
नहीं, ये कौन से उदय में, यहाँ बात अपनी जो कर्म के उदय की चल रही है, तो जीव को असाता कब कहलाएगा और साता कब कहलाएगा, ये हमारे साता असाता की बात है, वो वायु का एक नहीं, उसकी बात नहीं चल रही है। आपको ये जो प्रश्न है कि मंदिरों में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि वो भी एक इंद्रिय है, अग्नि का एक है, वो भी अग्नि का एक जीव है, इलेक्ट्रिसिटी अग्नि का एक जीव है, इसलिए उसका उपयोग नहीं करते हैं। वो जो नहीं करते उसके कारण पीछे क्या है, क्योंकि वो भी एक इंद्रियों के जीव हिंसा टालने, वो तो मुनियों के लिए उपदेश था, मुनियों के लिए वो तो स्थावर जीवों की हिंसा से बचते हैं, वो उसका त्याग है उनके, तो उस हिसाब से वो पंखा नहीं लगाएंगे और लाइट नहीं जलाएंगे वगैरह। वायु का एक है और बिजली लगाते तो अग्नि का एक तो है ही है, वहाँ भी एक इंद्रियों की, हम उसकी चर्चा यहाँ नहीं चल रही। हाँ आप भले आपका प्रश्न, हाँ
उनके आगे बढ़ने जो प्रश्न आया,
हाँ प्रश्न जरूर पूछना, हाँ मिल गया ना। ये तो सब एक इंद्रिय जीव है, और जब सामायिक में बैठते हैं या कोई, तो सभी हिंसा का त्याग करके, सभी सावध्य का त्याग करके बैठा जाता है, तो इसलिए वो पद्धति पड़ी है। परंतु वो भी एक इंद्रियों के जो हिंसा के त्याग की बात है, भले श्रावक नहीं करे वो बात नहीं है, क्रिया में तो कुछ यानी ऐसे ही होती है, परंतु तो उसके पीछे का भाव गुम हो जाता है, केवल क्रिया रह जाती है, उसके लिए कुछ चर्चा होती है कभी। मूल में क्यों शुरू हुआ ये हमको जानना है।
आपको समझ में आ गए ऐसी बात, ऐसे मुनिराज जो होते हैं, जो छठे सातवें अवस्था वाले मुनिराज जो होते हैं, उनकी ना दृश्य जीवों की हिंसा होती है, न स्थावर जीवों की, क्योंकि उसको महाव्रत कहा जाता है, महाव्रत अहिंसा भाव आदि। अब जो पंचम अवस्था वाले जीव है, वे दृश्य जीवों की हिंसा तो करते ही नहीं, उससे बचते भी अपने को संभालते भी है, लेकिन स्थावर जो उनकी हिंसा होती है उससे नहीं बचते, उससे टलते नहीं, मतलब तो वो हो जाती है। अब हम कैसे हैं कि ना स्थावर है, सॉरी ना मुनिराज है और ना श्रावक है, ना चतुर्थ नुकसान होती है। मैं मेरी बात करूँ आपको, आप जानते हैं, तो इनको तो असंयम ही कहा, यहाँ तो एक जीवों की हिंसा न होए ऐसा शुभभाव आता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उससे धर्म होता है ऐसा मानकर अगर हम उसको आचरण में लाते हैं तो बात
आचरण का निषेध नहीं है। देखो जब सामायिक है ने वो मैं इतने काल तक यहाँ से नहीं हिलूंगा, ये तो उसके है ना, इसीलिए तो वो बैठा है। अब उस काल में वो एक इंद्रिय की हिंसा का भी त्याग करके बैठा है, तो मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगा ऐसे करके वो बैठा है, ख्याल में आती ना बात। जैसे दिग्व्रत देशव्रत में भी हमने देखा, वो दोपहर में चली ना बात रविवार को, मैं घर के छोड़ के या इतने एरिया के बाहर, अभी सामायिक के काल में तो उसमें भी मैं बैठा हूँ, यहाँ से हिलूंगा नहीं, और इन सभी जीवों की हिंसा का मैं त्याग करके बैठा हूँ, ये करने योग्य है, परंतु ये धर्म नहीं है, ये मानना योग्य है। करने का निषेध नहीं है, मानने मिथ्या मान्यता का निषेध हो रहा है।
करो आप अहिंसा परमो धर्म, क्या बोल रहा हूँ, हम एक इंद्रिय की हिंसा से बचना चाहते हैं और बाह्य में अनेक मन में संकल्प विकल्प चलते हैं, तो अपनी स्वयं की हिंसा हो रही है क्या नहीं? एक इंद्रिय को बचाते हमारा उपयोग तो एक इंद्रिय बचाने के लिए पर में जाता है, या स्व की हिंसा समय समय हो रही है, पंचेंद्रिय जीव वो हमारे ज्ञान में आ रहे हैं। मैं क्या कहता हूँ, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय अधिक मतलब उसका बल छोटा है, अगर वो मरे तो
हमने इसी दल के समय कम,
तो वो तो अलग बात है, वो पर्सनली प्रत्येक बात अगर प्रश्न भी नहीं
मैंने एसी ऑन करो और लाइट बंद करो या पंखा बंद करो, इसमें तो क्या वही हुआ ना, एसी ऑन क्यों किया, क्योंकि तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय चल रहा है,
कम्फर्ट है,
हाँ कम्फर्ट है, किसको
शरीर रूप माना ना,
माना नहीं,
अरे वाह
शरीर नहीं मानता, मतलब
ये पलायन वाद है,
तो आप आचरण ऐसा नहीं
कर
रहे। देखो आप जानते
हैं
पर्वत के ऊपर शिला पर जाके बैठते हैं पत्थर पर, तो कौन सी इशू चलता है,
ये ज्यादा अनकंफर्टेबल करके बैठना है आपको, नहीं समझे,
यही तो गड़बड़ है ना।
देखो मात्र हमने हिंसा का त्याग करना इतना ही समझ
होता है, वातावरण लेकर हमारे वही पढ़ने में सेट हो जाए,
कुछ नहीं सेट होता है,
पढ़ने में सेट अलग बात है।
देखो हम जैसे इंद्रियों का यानी जैसे हिंसा का त्याग करके बैठते हैं, वैसे इंद्रियों के विषयों का त्याग करके बैठना है कि नहीं बैठना है, दोनों आ गए ना उसमें, अभी घंटे भर के लिए आप बैठना है तो इंद्रियों के विषयों का भी त्याग कर, फिर उसमें कंफर्ट है कि अनकंफर्ट है देखते हैं, हम उसका त्याग नहीं हो रहा है।
और आप जो बता रहे ना कि एक सामायिक एक घंटा पौना घंटा जो भी होता है आप तो लोग कहते मैं यहाँ से
आई। کیا کرتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, سامنے ٹی وی لگائیں گے اور بیٹھیں گے, میں تو جگہ ہی نہیں چھوڑتا ہوں صاحب, جیسا ہم نے پرتیکش دیکھا ہے وہ گپا نہیں مار رہا ہوں. یعنی یہ کیا ہے آپ کے, کیا مطلب پانچ انڈین کے وشوں کا بھی تیار ہے وہاں پر,
اور وہاں تو راگ دویش کی پرورتی چل رہی ہے, کیول ایک جگہ بیٹھنا سامائک نہیں ہے, اس میں سوروپ کا چنتون ہوگا تو وہ سامائک ہو جائے گا. یعنی یہاں جو کریائیں کوری رہ گئی ہے اس کے پیچھے کا اندر کا مال چلا گیا, اس کا نشید نہیں ہے, یہ لوگ سنتے ہی نہیں ہے, لوگوں کو لگتا ہے کریا کا ہی نشید ہو رہا ہے, پرنتو سامائک سچی سامائک کب ہوگی جب سوروپ کے وہاں ابھی انوبھو کے بھی بدلے اس کے سوروپ سمبندھی چنتون تتو کا وچار بھی چلے گا, کیونکہ سوروپ میں تو لگاتار سر نہیں ہو جائے گا, ابھی جو سمیک تو جس کو نہیں ہوا ہے وہ بھی بیٹھا ہے مان لیتے ہیں, پھر بھی وہ تتو کا وچار تتو کا نرنے کرنے کے پرتی اس کا اپیوگ لگا ہے کہ بیٹھا ہے اور دنیا بھر کے وکلپ کر رہے ہیں.
میں یہی بولتا ہوں کہ ہمارے اس کے بارے میں پڑھنا ہے, یہی سوچنا ہے
کرو, مگر اس کو آپ سامائک مت مانو, اس کو سامائک مت کہو, پڑھو نا. اے سی میں سوتے ہو, اے سی میں بیٹھتے ہو, اے سی میں ویاپار دھندا کرتے ہو, اے سی میں بیٹھ کر سوادھیا کر رہے اتنا مانو, اس کو سامائک مت کہو, خیال میں آئے نا.
جسٹیفائی بھی ہوتا ہے,
جسٹیفائی کوئی بات نہیں. یعنی وہاں
فیصلے کے اندر میں نے تو انسسٹ کیا تھا کہ لائٹ کرنی چاہیے, کیونکہ ابھی بندی میں اندر تو آپ بولیں گے کہ 7 بجے چھوڑ دو, پر تو یہ تو ابھی فری ہوتا ہے کام کے بعد آتا ہے, تو
بات صحیح. اس کے پیچھے کا ہمارا پریوجن اپنے خیال میں رکھنا ہے, ابھیپرائے خیال میں رکھنا ہے. ہم تو سوادھیا کرنا چاہتے, بنا لائٹ کے ہم شام کو نہیں پڑھ سکتے, اس لیے ہم نے لائٹ لگائی, ابھی بھی ہم لائٹ لگا کے, پر ہم اس کو ہنسا کا تیاگ نہیں مان رہے, ہم اس کو سامائک نہیں مان رہے, خیال میں آئی بات. سامائک میں تو باہر سبھی چیزوں کا, اندریوں کے وشیوں کا بھی لکش چھوٹنا چاہیے, اور یہ ہنسا کا بھی تیاگ ہو کے ہم سامائک لیتے, اس کو آپ سوادھیا سمجھو نا. سوادھیا کے لیے تو کوئی نشید نہیں ہے, ابھی وہاں دنیا میں کیا چلتی ہو نہیں, ہمیں تو اپنا, ہمیں تو اس کو کیا کہنا یا کیا نہیں کہنا, کیا ماننے کی بات ہے. بولے ابھی ایسا بھی ہے, ابھی آج کل یعنی ہمیں تو یہ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ سامائک لے کے بیٹھتے ہیں, پرنتو وہ الیکٹرانک کو یعنی وہ نہیں لگانا ہے تو سی ڈی وغیرہ نہیں سنتے ہیں, کیونکہ وہ تو وہاں ایک اندریہ جیو چلتے ہیں, میں تو وہ تو پستک پڑھتے پھر بیٹھ کر. ٹھیک ہے نا, آپ ایک جگہ بیٹھے اور پستک پڑھ رہے, آپ کا اپیوگ اس میں لگا ہے, تتو میں لگا ہے. ابھی اس کو سامائک نام دینے کی چیشٹا کیوں کرتے وہ مجھے پتا نہیں ہے, پھر بھی اگر نام بھی دیتے اور بیٹھ کر گھنٹہ بھر پڑھتے بھی ہے اور اس میں اپیوگ لگا کے پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے, اس میں کچھ کلیان ہوگا, پرنتو وہ دھرم نہیں ہے, اتنا بات خیال نہیں ہوگا. دھرم تو تبھی ہوگا جب آتما کا انوبھو چلے گا, تبھی دھرم کہیں گے اس کو. یہ اپچار سے ابھی دھرم کسی کو بھی کہنے میں آتا ہے, اس کی بات نہیں. ابھی ہم یہاں کرموں کی بات چل رہی ہے, اپنے چار گھاتی کرم ہم نے دیکھے تھے, گیاناورن, درشناورن, موہنیر اور انترائے. پستک ہے نا آپ کے پاس, ابھی 10 پیج پر ہم پڑھ رہے ہیں, یہ پہلا جو بڑا پیراگراف اس کے 4-5 لائن ہو گئے ہیں. 5ویں نمبر پر ہم نے دیکھا تھا ویدنی کرم, اور 6ویں نمبر پر دیکھا تھا آیو کرم. اس کا ارتھ کیا ہے, آیو کرم ہمیں اس گتی سے چھوڑتا نہیں ہے, مرنے نہیں دیتا, تو اچھا ہے کہ نہیں. کیوں, جیسے کسی قیدی کو کاراواس میں رکھا اور کاراواس کی وہ دیوار ٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے گا قیدی, اچھا مانے گا کہ برا مانے گا؟ اچھا مانے گا. اور ہم کیسے, یہ آیو سماپت ہونے کو آتی ہے تو ہائے ہائے, یہاں نہیں تو امریکہ میں دوڑیں گے, لندن میں دوڑیں گے, نہیں ہمارا یہ کاراواس کہیں ٹوٹ نہیں جائے, چھوٹ نہیں جائے, مانتا میں کیا رکھا ہے انہیں, باقی تو کرم برے ہے, بندہ آیو کرم تو چاہیے. یعنی ہاں یہ تو ابھیپرائے میں کیا پڑا ہے اس کی بات, ایسے تو ہم کہتے کہ ہم کے تو چھوٹنا ہے کرم سے چھوٹنا ہے, تو آیو کرم جا رہے ہیں نا, ابھی نشٹ ہو رہے ہیں نا, اچھا ہے نا, نہیں وہ چاہیے. और फिर भी कौन सा आयु अच्छा, नरक का, नरक का आयु नहीं अच्छी, फिर जी चाहिए अच्छी नहीं है ना, देवायु चाहिए, मनुष्य आयु चाहिए। गति जाति शरीर आदि निपजावे सो नाम कर्म, यानी नाम कर्म के उदय से ये जीव कौन सी जाति जाती है, वो एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय वो जाति कहलाते हैं, नरक गति तिरंजीव होती है, ये सारे गतियां हैं। तो जीव कहाँ उत्पन्न होता है, किस पर्याय में उत्पन्न होता है, ये कैसे होता है, नाम कर्म के अनुसार। तो बिचारा जीव है क्या नाम कर्म, अरे पर तो नाम कर्म वो पर्टिकुलर नाम कर्म क्यों आया वहां उदय में, वो उसी जीव ने बांधा है, जिसने बांधा है उसी का उदय हो रहा है, उसी का वो फल भी भुगत रहा है। तो ये सारे जो शरीर आदि की रचना है वो क्या है, नाम कर्म का कार्य है। और ये कर्म का हमने माना कि यह मैं हूं माना हमने, भूल जीव की क्या हुई, ये सब अभी हम देखेंगे। एक एक कर्म के उदय में क्या क्या होता है और जीव ने उसको कर्म का माना कि अपना माना, यही उसकी भूल चल रही है। आगे देखते हैं, उच्च नीच कुल विषय धरे सो गोत्र कर्म है। ऐसे कर्म की मूल प्रकृति तो आठ है। देखो ये कर्मों का जो जो कार्य देखा हमने अभी, ज्ञानावरण के उदय में क्या हो रहा है, जीव के ज्ञान की हीनता हो रही, उसका स्वभाव कितना है, तो केवल ज्ञान स्वभाव। देखो अभी हम कर्म का एक खाता रखेंगे और जीव का खाता, अपना खाता एक और कर्म का खाता। किसी के अन्य के पैसे रुपए डिपॉजिट आपके पास हो तो कोई बात नहीं है, उसको आप कैसा रखते हैं, उसका है मानकर हमने अपने तिजोरी में रखा, भले रखो, उसको अपना मानेंगे तो क्या कहलाएंगे, चोर। हम तो चोर नहीं है, क्या सचमुच नहीं है, क्या है जो देखेंगे। अभी अपना खाते का माल और एक कर्म का खाते का माल, तो जो ज्ञानावरण की जो उसके उदय में जो हमारे स्वभाव की हीनता हो रही, ज्ञान की हीनता, वो कर्म के खाते में है, हीनता। हमारा स्वभाव तो पूरा केवल ज्ञान समर्पित है, वो अपने खाते में। अब दर्शनावरण के भी खाते में ऐसा है, जो परिपूर्ण केवल दर्शन हमारा स्वभाव है, और कर्म के उदय में क्या हो रहा है, उसकी हीनता हो रही है। ये हम निमित्त की अपेक्षा उसका कह रहे हैं, मोहनीय में क्या हो रहा है, श्रद्धा की विपरीत मिथ्या। और हमारा कैसा स्वभाव है, तो सम्यक हमारा स्वभाव है, वैसे चारित्र मोहनीय में वितरागता हमारा स्वभाव है, और राग द्वेष है वो कर्म के खाते में, क्योंकि हमें भेद विज्ञान करना है कर्म में और हमारे में। कर्म के उदय में होने वाली बात है कर्म के खाते में, और हमारा जो मूल स्वभाव है वो तो अपने खाते में। ऐसे अनंत वीर हमारा स्वभाव है, और जो पुरुषार्थ की हीनता हो रही है वो कर्म के खाते में डाले, ये तो घाती की बात हुई। अघाती में हमने क्या देखा था, बाह्य जो सामग्री है वो किसमें, कर्म के खाते में। देखो अभी आपका कुछ नहीं रहा, इतना सारा मेहनत करके पैसा कमाया, बंगला बांधा, गाड़ी ले ली, ये सब बाह्य सामग्री किसमें चली गई, कर्म के खाते में। शरीर वो नाम कर्म के खाते में, अभी हमारे पास जीरो रह गया ना, क्या रह गया, पूरा भरा पड़ा वो केवल ज्ञान स्वभाव से। परंतु ये पूरा भरा पड़ा हूँ इसको कभी माना ही नहीं है, और ये जो बाह्य सामग्री देह की रचना जो कर्म के कारण हुई है उसको ही मैं माना, और बाह्य सामग्री को अपनी मानी। और फिर आगे क्या है, उच्च नीच कुल, ये जो सारे जो कहे तो बाह्य पदार्थ में है सारे कुछ, तो हमने क्या इसको कर्म के खाते में कर्म का मानकर अपना कुछ अलग खाता रखा कि उसी की बातों में ये मैं हूं, अपनी तो बात भूल ही गया। हम व्यापार धंधा करते हैं, जो कोई कमाई होती है वो किसको देते हैं, कर्म बाजू वाले को देते हैं ना, उसके बैंक में डालते हैं, वहां तो बराबर है अपना किसका है, हाँ एक घर के लोग भी वो ये मेरा खाता है तेरा खाता है, मेरा कपाट है तेरा कपाट है, मेरे कपड़े तेरे कपड़े, ये तो वो चलता है बहुत,
ऐसा नहीं है।
दो खाता मेरा है। तो यहाँ हमने कर्म की बातें उसको कर्म के ऐसा माना ही नहीं, उस वो मेरी है मैं हूँ ऐसा मान ली है जीव की भूल। अब आगे इनकी उत्तर प्रकृतियां देखेंगे। अब उत्तर प्रकृति कहिए है पांच ज्ञानावरण की, पांच प्रकार के ज्ञान है, उसके आगे आवरण शब्द लगा लो तो ये ज्ञानावरण के पांच भेद हो जाएंगे। जो जीव के मति ज्ञान को आवरण डालता है सो मति ज्ञानावरण कहिए। जो श्रुत ज्ञान को आवरे सो श्रुत ज्ञानावरण कहिए, जो अवधि ज्ञान को आवरे सो अवधि ज्ञानावरण कहिए, और जो मनपर्य ज्ञान को आवरे सो मनपर्य ज्ञानावरण कहिए। और जाके उदय कही केवल ज्ञान का अभाव रहे सो केवल ज्ञानावरण कहिए। तो हमारे तो सभी पांचों ही ज्ञानावरण है। अब दर्शनावरण की नौ प्रकृति को कहे, ज्ञानावरण की कितनी देखी भाई, कौन सी? बहुत अच्छा, ये पांच ज्ञानावरण के उत्तर प्रकृति कहेंगे उसको, यानी सब डिविजन्स। दर्शनावरण की नौ है। देखो दर्शन गुण की पर्याय तो चार ही है, कौन सी? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। परंतु दर्शनावरण कर्म कितने हैं? तो नौ है। तो ये जो हमने चार देखे दर्शन की पर्याय, उसके आगे आवरण तो लगा कर उसके तो हो ही जाएंगे। और जो पांच प्रकार की निद्रा है, निद्रा प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यानुवृत्ति, ये भी दर्शनावरण कर्म है। किसका घात करते हैं? नहीं, जागृत अवस्था, अपने प्रतिपक्ष का घात करते हैं। निद्रा का प्रतिपक्षी कौन है? जागृत अवस्था। क्योंकि निद्रा में भी चक्षुदर्शन तो चलेगा कि नहीं? अचक्षुदर्शन की बात तो चलती है, क्योंकि मन का भी कार्य वहां चल रहा है। और नींद में भी अच्छी नींद लगी कि नहीं लगी कैसे समझा? सपना ऐसे सपने में देखा वो कैसे समझा? तो वहां भी ज्ञान दर्शन का कार्य तो चल रहा है, क्या रुक गया? नींद में भी जानना चलता है कि नहीं? चलता है। देखो अब दर्शनावरण की नौ प्रकृति को कहिए, तहा पांच तो निद्रा कर्म, ये कौन कौन से उसको बताते हैं। स्त्यान वृद्धि कर्म के उदय होते जीव के स्त्यान वृद्धि निद्रा होए, उस निद्रा का ही नाम स्त्यान वृद्धि। ये अत्यंत गाढ़ी निद्रा कैसी, उसका भी वर्णन कर रहे। ता करिए ने उससे जीव सोता ही जागता सा कार्य करे, यानी नींद में ही वो चलता है, नींद में कुछ कर बड़बड़ाता है या कहीं घर के बाहर जाके कहीं घूम के भी आता है। आपने ऐसे देखी होगी, अगर अपने रिलेटिव में होता है तो ताला चाबी यानी ताला लगा के अंदर से बंद करना पड़ता है, कहीं बाहर नहीं निकल जावे। वैसे कार्य कर नींद में करता है, सोता ही यानी सोते हुए ही जागरूक जैसा कार्य कर लेता है। विशेष वीर्य हुए, हाँ। और निद्रा, आगे की भी बात और सुनो, निद्रा का अभाव होते किए कार्य का स्मरण न होए, उसने नींद में क्या किया उसके उसको कोई मालूम नहीं पड़ता, उसको याद नहीं रहता। ये अपने वो कहानियों में कादंबरियों में पहले हम बचपन में वो वीर धवल नाम की वो रात भर में कुछ कुछ करके आता था, वो उसको पता नहीं चलता। ऐसे अन्य भी बहुत सारी स्टोरियां देखी है ना हमने, तो ये ऐसी स्त्यान वृद्धि वाली। अब निद्रा निद्रा कर्म के उदय होते जीव के निद्रा पे निद्रा आया ही करे, ये सोता ही सोता रहे। अनेक प्रकार यह निद्रा भाव जीव जागृत भया चाहे परंतु निद्रा का परिहार न कर सके, बहुत जागना चाहता है परंतु नींद छोड़ नहीं सकता, जैसे प्रवचन में भी होता है ना आप लोगों को नहीं होता हमको ऐसे मिलते बताने वाले, प्रवचन से चालू होता ही हमको बराबर नींद आती है। मैंने बोला अन्य कोई लाभ हो नहीं हो मोक्ष मार्ग संबंधी कर्म के उदय का अभाव भय ही जागृत हो, यानी उसका उदय जो मिट जाए अन्य रूप हो जाए तब उसको जागृत हो जाता है। बहुरी प्रचला प्रचला कर्म के उदय होते जीव को प्रचला प्रचला निद्रा होए, ता करी जीव दुखी होए हस्त पादानी अंगनी को पटकवो करे, समस्त अंग चलायमान रहे। हाँ देखो देखो हस्त पादानी हाथ पे, हाँ उसका नाम उसी को बता रहे। प्रचला प्रचला का अर्थ क्या है कि ऐसी नींद आती है कि नींद में वो हाथ पैर पटकता है, हा? और क्या करता है, समस्त अंग चलायमान करे। मुख थकी लार बहे, इन मुंह से लार बहती है इत्यादि चिन्ह सहित होए सो यह निद्रा शोक संतापादिक उपजावे है। निद्रा कर्म के उदय होते जीव चालता ही सोवे, खड़ा रह जाए, बैठा ही सोवे, दीर्घ उच्छ्वास ले इत्यादि चिन्ह सहित होए।
स्वप्न वाली निद्रा कौन सी
है? ये तो कहीं भी आती है। अच्छा, स्वप्न कहीं पर भी हो सकते हैं।
अच्छा, हाँ।
प्रचला नाम कर्म के उदय ते जीव सोता सा भी रह जाए, कार्य करता जाए, फिर सोए जाए, जागृत होए, वचनालाप करे, फिर सोए जाए, इत्यादि चेष्टा सहित होए है। यानी वो तो हल्की सी नींद है मगर बीच बीच में उसकी झपकी लगती है, फिर भी कार्य भी चलता रहता है, इस तरह से। ये तो पांच प्रकार निद्रा हुए। हाँ, स्वाध्याय में काम होते
ये निद्रा तो 12वें गुरु स्थान तक उदय में रहती है।
हाँ, परंतु वहाँ कितना अनुभव उसका ही होगा।
अच्छा, उदय है, ये
उदय है वहाँ पर
जीव नींद में लेता है,
यानी वहाँ ऐसे नींद लेने का कार्य नहीं चल रहा है उसका, क्योंकि ये हम जानते हैं ना, ये तो प्रायोगिक लब्धि से कहो या कितने वो अपूर्व करण से, तो कितना उसमें तो अशुभ कर्मों का अनुभव कांडक घात हजारों 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 बार होते गए है, तो वहाँ नहीं के बराबर रह गया, फिर भी वो ओरिजिनल कर्म का नाम क्या है, तो निद्रा प्रचला है, तो वहाँ उसका उदय पाया जाता है। और कंटिन्यूस उदय भी तो है नहीं, अभी कर्म है, जब उदय है नहीं है, इस तरह से
पड़ा।
हाँ, पड़ा है उसका कुछ।
हाँ,
यानी उसका उदय नहीं के बराबर ही है, जैसे केवली को वासाता वेदनी का उदय का, 9वें गुणस्थान तक वेद कर्म का उदय का, तो वहाँ ऐसा उसका कुछ कार्य नहीं हो रहा है। ये तो निद्रा संबंधी हो गए, ये पांच देखे, अभी और चार है। चक्षु दर्शनावरण कर्म के उदय तय चक्षु दर्शन का अभाव होए, नेत्रेंद्रिय के द्वारा सामान्य ज्ञान का अभाव होए, यानी चक्षु दर्शनावरण के उदय से,
माने उसको नेत्रेंद्रिय होती ही नहीं, ऐसा कहना चाहते हैं कि नेत्रेंद्रिय हो सकती है?
देखो, उसका उदय है ऐसा कहा। हाँ। और हमारे आपके क्या है, क्षोभशम है, चक्षु दर्शनावरण का क्षोभशम चल रहा है। क्षोभशम का अर्थ क्या है, थोड़ा खुला है, थोड़ा। अब एक इंद्रिय जीवों को तो पूरा ही उदय ही है, और वो कैसा है, ये तो देशघाती कर्म है, तो उसके सर्वघाती का उदय, तो उसके वो बनेगी ही नहीं, उसके तो होगी नहीं, वैसे उसके चक्षु नहीं, नहीं ब्लाइंड वाले को है, परंतु उसके द्रव्येंद्रियों में कुछ खोट है, परंतु नहीं, उसके क्षोभशम है वहां पर, उसको चक्षुदर्शनी जीव कहेंगे, अंधे जीव को भी चक्षुदर्शनी कहेंगे, उसको पंचेंद्रिय कहेंगे कि चार इंद्रिय वाला कहेंगे, पंचेंद्रिय कहेंगे, भले बहरा है तो भी उसको पंचेंद्रिय कहेंगे हम। उसके वहां ज्ञान का ऐसा हीन क्षोभशम चल रहा है कि वैसे, और यदि ऐसा नहीं होता तो बाह्य से कोई इंद्रियों के इलाज करने पर वो कैसे जान सकता था, वो नहीं जान सकता था। अंदर कर्मों का क्षोभशम पड़ा है परंतु हीन रूप परिणमित हो रहा है, कर्मों का क्षोभशम वैसे पड़ा है, हीन रूप परिणमित हो रहा है, उसी में सहज रूप से ऐसे कोई उसका क्षोभशम कर्म का बढ़ गया तो बाह्य विनिमित्त सहज मिल जाएगा उसको। ऐसा नहीं कि हमने ऐसा किया इसलिए कर्म में चेंज हुआ, क्या नहीं, कर्म में चेंज हुआ तो बाह्य भी उसके निमित्त उसको सहज मिल गए। ऊपर भी लिखा ना, कर्म के उदय का अभाव होते ही जागृत हुए, हम बाहर किसी के मुंह पर पानी डाल दिया वो जागृत हो गया, तो कर्म का उदय मिल गया वहां, तो उसमें बाह्य निमित्त भी मिल गया। हम तो निमित्त की ओर से देखते हैं ना, इसलिए हमें ऐसे ही भ्रम होता है कि देखो बाहर से इलाज किया तभी तो हुआ ना, देखो हमारा तो ज्ञान अभी अच्छा चल रहा था और आपने एनेस्थेसिया दे दिया, क्यों सर लगे, तो क्या हुआ उसका ज्ञान, क्या हुआ, तो उसका ज्ञानावरण का ऐसा ही क्षोभशम हीन रूप परिणमित होने वाला था, तो बाह्य में एनेस्थेसिया का निमित्त मिला उसको, ये बाह्य जो निमित्त है ना, हाँ, वो उसको नाम है, आगे आएगा शायद, कर्म के नौ कर्म कहलाते हैं उसको। हाँ, बाह्य निमित्त मिलते हैं, जैसे यहाँ असाता का उदय चल रहा था, रोग हो रहा था, साता का उदय होने आया, तो बाह्य में उसको ऐसा निमित्त भी मिल गया, कोई किसी का इलाज मिल गया, और कि कोई कोई तो ऐसे निमित्त, परंतु यदि यहाँ योग्यता है तो यहाँ वैसा निमित्त मिल जाता है। हम तो निमित्त ढूंढने की कोशिश करते, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है ना, दवा दिया और उसके एलर्जी हो गई। सर्वघाती का उदय, चक्षु दर्शनावरण के सर्वघाती का उदय, और बाकी चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रियों को उसका क्षोभशम, क्षोभशम में ही ना दिखता चलेगी, उघाड़ में ही ना दिखता चलेगी। तो ये चक्षु दर्शनावरण हो गया, और चक्षु दर्शनावरण कर्म के उदय तय, और चक्षु दर्शन का अभाव हो, स्पर्शन रसन घ्राण श्रोत्र इन चार इंद्रियों के द्वारा सामान्य ज्ञान का अभाव हो। चक्षु दर्शनावरण चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान के पूर्व में होने वाला वो चक्षु दर्शन, और चक्षु दर्शन ये चक्षु बिना अन्य चार इंद्रिय कौन से, स्पर्शन इंद्रिय है, रसन इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है, तो उसके द्वारा जो ज्ञान होता है उसके पहले वाला होना है सामान्य अवलोकन। यहाँ सामान्य ज्ञान कहा, दर्शन को यहाँ सामान्य ज्ञान कहा है, सामान्य अवलोकन जिसको हम कहते हैं। अवधि दर्शनावरण कर्म के ये मन संबंधी भी अचक्षु दर्शनावरण लगेगा, मन संबंधी जो ज्ञान चलता है उसमें भी अचक्षु दर्शनावरण चलेगा, क्योंकि वो भी मति ज्ञान है ना, वहां उसके पहले अचक्षु दर्शनावरण होगा। यह इंद्रियों की बात चली है इसलिए उसको चार इंद्रियों को ले लिया। अवधि दर्शनावरण कर्म के उदय तई अवधि दर्शन का अभाव हो, अवधि दर्शन ये सम्यक अवधि में लगा दिया था, और केवल दर्शनावरण कर्म के उदय होते हैं, केवल दर्शन का अभाव है। हम आपको केवल दर्शन का अभाव है तो हमारे केवल दर्शनावरण का उदय चल रहा है, वो तो सर्वघाती ही है। ये ख्याल में ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण ये दो आवरण वाले कर्म है। हमारा स्वभाव ज्ञान और दर्शन है, और हमारा स्वभाव परिपूर्ण पर्याय में प्रकट नहीं हो रहा है तो हम तो सारा दोष कर्म पर डालते हैं, परंतु ये जीव की अवस्था जीव के अपने योग्यता से होती है, अपने कारण होती है। जब उपादान से कार्य होता है तो सामने वैसा निमित्त हाजिर है बस, तो वो निमित्त की ओर देखकर हम कहेंगे कर्म ने इसको आवरण डाला, ये कथन पद्धति है। पूरे ही कर्णानियोग के शास्त्र में भाषा ऐसी होती है, जीव ने कर्म को बांधा, कर्म को उपशमाया, कर्म का क्षय किया, या कर्म ने जीव का ऐसा आवरण किया उसका घात किया, ये कथन पद्धति है। और उसके कथन के पीछे का जो सही अर्थ है वो समझना हमारी जिम्मेदारी, नहीं तो पहले से निमित्ताधीन दृष्टि तो पड़ी अनादि से, और ऐसा सुनकर लगता है अरे क्या करे ये कर्म है इसलिए हमको ऐसा करना पड़ता है। हम तो सुनना नहीं चाहते, पर हमारे क्या है ऐसे कर्म का उदय है, वो टीवी सीरियल में कभी वो कर्म नहीं आता, वो बराबर सियाना है, बहुत साधन में आता है बराबर। ये अंतराय कर्म भी कभी नहीं आता ना, हम कहीं पार्टी में जाना है, टीवी सीरियल देखने, वो अंतराय कभी नहीं आड़ा आता, जब शास्त्र में जाते तभी वो आता है। हाँ तभी दिखता भी है। अब मोह कर्म दो प्रकार है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। ये मोह कहो या मोहनीय कहो एक ही बात, कौन से दो भेद? हाँ प्रभाव नहीं 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 हाँ और चारित्र मोह, मोहनीय कर्म के मूल दो भेद दर्शन मोहनी और चारित्र मोह। तथा दर्शन मोह कर्म तीन प्रकार का है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। इसको सम्यक प्रकृति इतना भी कहेंगे तो भी चले, परंतु वो तो मिथ्यात्व कर्म जैसे, इसलिए मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व कह दिया। ये दर्शन मोहनी के भेद है। मिथ्यात्व कर्म के उदय तय जीव के अन्यथा अभिप्राय, अन्यथा ने विपरीत, अभिप्राय ने मान्यता, श्रद्धा उल्टी मान्यता, जैसा वस्तु का स्वरूप है जैसी रियलिटी है वैसा न मानकर अन्यथा मान रहा है, विपरीत मान रहा है, उल्टा मान रहा है, वो कर स्वयं अपने अपराध से, तब सामने मिथ्यात्व नाम का कर्म वहां पड़ा है, हाजिर है, उसका उदय चल रहा है। जीवादि तत्वों का स्वरूप अन्यथा श्रद्धान करे, किस संबंधी में अभिप्राय उल्टा है, ये पेन है कि पेंसिल है ऐसे अभिप्राय की बात नहीं है, जीवादि तत्वों के स्वरूप को अन्यथा यानी विपरीत श्रद्धान करता है, तो ये जीवादि तत्व कौन कौन से है और कितने हैं? जीवादि तत्व कितने हैं? सात है। नाम बताएंगे?
जीव तत्व, विद्या तत्व,
धर्म। तत्व को ही नाम बताने, जीव तत्व के ना। मैंने द्रव्य नहीं पूछे, तत्व पूछे हैं। बोलो नलिन।
जीव तत्व, आश्रम तत्व, बंध तत्व,
मोक्ष तत्व, ये सात तत्व। ख्याल में आएगा? तो क्या कहता है, ये किस संबंधी विपरीत मान्यता चल रही है? आपको सब मालूम है, घोटाले घोटाले कर दे रहे हैं। तो जीवादि तत्वन का स्वरूप अन्यथा श्रद्धान करे, प्रयोजनभूत तत्व है, इनका सही श्रद्धान करेगा, उस संबंधी सही निर्णय होगा, तो ये आगे चलकर मोक्ष मार्ग उसका शुरू होगा। तो यहाँ कहते हैं उनकी संबंधी विपरीत मान्यता चल रही है उसके। यथा स्वरूप श्रद्धान न करे, यथा स्वरूप यानी जैसा है वैसा उसकी श्रद्धान नहीं करता, जैसा नहीं है वैसे श्रद्धान करता। ये शरीर अजीव तत्व है, क्या ऐसा श्रद्धान कर रहा है कि यह मैं जीव हूं ऐसा मान रहा है? आश्रव बंध जो है, अभी रागादि भाव जो है, उसको हेय माना कि उपादेय माना, यानी करने योग्य माना? क्यों? राग में तो शुभ राग भी है और अशुभ राग, तो हमने तो अशुभ को तो हेय माना, परंतु शुभ तो करना चाहिए ना, मान्यता में क्या लिया उसको? ये प्रवृत्ति की बात नहीं, मान्यता की बात है। ऐसा नहीं कहा कि प्रवृत्ति में वो छोड़ना चाहिए, ऐसा मान्यता में पहले पकड़ो तो प्रवृत्ति है, उसके अनुसार जब यथा योग्य अपनी भूमिका अनुसार वो भाव आएंगे उसको, वैसी प्रवृत्ति भी होगी उसकी। परंतु मूल में मान्यता में जो बात है वो विपरीत है, उसकी तो कुछ कंसिडर नहीं करता, और पहले में पहले या तो कर रहा था वो छोड़ना चाहता है, या छोड़ा है वो ग्रहण करना चाहता है, किसमें? प्रवृत्ति में। और मान्यता की बात पर कुछ सोचता ही नहीं है। तो यहाँ मूल मोक्ष मार्ग तो ये सही मान्यता से शुरू होगा। तो कहते यथा स्वरूप श्रद्धा न करे, तो क्या करे? ये हमारा मिथ्यात्व कर्म इसलिए नहीं होता, ऐसा नहीं है। जीव जिस काल में तत्व विचार करने लगता है, ये आगे चलकर पंच लब्धि का विषय है, ये अपना यहाँ लब्धि सार में भी हुआ था। जब तत्व के विचार चलते हैं, तत्व निर्णय करने तक पहुंचता है, तो उसके कर्मों में इतनी उथल पुथल हो जाती है कि सहज रूप से वो यानी जिसको कहते ना, तो जो उसकी कुछ अशुभ प्रकृतियां, उसका तो अनुभव मिटता भी है, ज्ञानावरण का भी अनुभव हीन होता है, मिथ्या तो भी मंद मंद होता है, और ऐसा एक काल ऐसा आता है कि दर्शन होने का उपशम हो जाता है। कर्मों में उसको कुछ नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। किससे हुआ? कुछ करने से तो होगा ही नहीं। क्या करना चाहता है वो? चाहता क्या है? तो शुभ भाव कुछ करके, कुछ क्रिया करके होगा मानता है, ये उसकी मान्यता में पड़ी। क्रिया का निषेध नहीं, भले ना शुभ क्रिया करे, और उसके तो होगी ही ना, स्वाध्याय करेगा, देवदर्शन करेगा, पूजा करेगा, दयादान होगी उसके, यात्रा भी करेगा, परंतु तत्व के विचार पूर्वक अभी उसमें आगे बढ़ता है तो उसके कर्मों में उपशमादि स्वयं होता है। ये तत्व विचार से ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। सब बातें कर रहा है परंतु तत्व विचार नहीं करेगा तो उसको नहीं होगा, और तत्व विचार कर रहा है और अन्य बातों में बहुत अभी स्थिति ले वो अभी उसकी इस पोजीशन में, तो भी तत्व विचार से उसको सम्मेलन होगा। परंतु हमने ऐसा अभिप्राय में उसका ऐसा पढ़ा है कि बाह्य में कुछ करूं 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 तो ही मेरा होगा, ये अभिप्राय की भूल है ये, और यही लौकिक में चलती रहती सब। एक दूसरे को उपदेश भी ऐसा ही दिया जाता कि तुम ज्ञान ज्ञान से होता है क्या, कुछ करोगे तो होगा ना। इन्हें शुभ भाव की महिमा आती है, ये शुद्ध वितराग भाव की महिमा नहीं आती उसकी। तो इसलिए कहते यथा स्वरूप श्रद्धा न करे। सम्यक मिथ्यात्व कर्म के उदय होते, ये तीसरे गुणस्थान में इसका उदय रहता है। जीव के यथार्थ श्रद्धान व मिथ्या श्रद्धान दोनों मिले हुए हुए, मिले हुए यानी अन्य जाति का विपरीत भाव है इसका, यानी सम्यक तो छूट गया है, यहाँ सम्यक तो नहीं है, वो मिला जुला कोई ऐसे अन्य जाति का परिणाम है। और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व के उदय होते, जीव के श्रद्धान तो यथार्थ हो, जिसको हम कहेंगे सम्यक प्रकृति, यानी ये कैसा है, अत्यंत हीन अनुभव हुआ है, ये देशघाती है। यानी सम्यक्त्व का घात तो नहीं कर सकता, सम्यक्त्व भी बना रहे और इसका उदय भी होता रहे, जिसको हम सूक्ष्म सम्यक्त्व में देखते हैं। परंतु श्रद्धान विषय, परंतु लगा दिया, श्रद्धान तो बराबर चल रहा है, परंतु कैसा है, थोड़ा चलमल अगाड़ दोष की उत्पत्ति हुआ करे और मिटा करे, यानी चलती रहे ऐसा भी नहीं। जैसे वो कोई चलता है मगर वो तो लकड़ी लेके चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा अस्थिर है, तो ऐसे डगमगाता है कभी कभी, ये गिर नहीं रहा है, परंतु कभी बीच बीच में उसके चलमल अगाड़ दोष की उत्पत्ति होती रहती है, चली जाती है। निर्मल श्रद्धा न रहे, जैसे औपशमिक सम्यक्त्व में और क्षायिक सम्यक्त्व में होता है, ऐसा निर्मल श्रद्धा इसके नहीं है। और ये भी ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा दोष ऐसा नहीं है, ये तो केवल ज्ञान गम्य बहुत हल्का सा ऐसा दोष है, परंतु वो है तो सही, वहां दर्शन मुनि की प्रकृति है तो उसका उदय है नहीं वहां पर, क्योंकि जो हम श्रेणी चढ़ता है जी, तो इसके उदय के साथ तो नहीं चढ़ सकता, फिर वो उपशम करके चढ़ता है, क्षय करके चढ़ता है, वो बात अलग आगे का विषय है। अभी तो हम कर्मों को गिन रहे उसके नाम वगैरह। अथ चारित्र मोह कर्म 25 प्रकार है, तहा अनंतानुबंधी क्रोध कर्म के उदय होते, जीव के अन्यथा अन्याय क्रोध होए, क्या कहते हैं? ये अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे चार प्रकार है। हम पहले ये चार नाम गिनते हैं, एक है अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, आपको रिपीट करना है, बोलो। प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, जोर से, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। अभी यहाँ इन्होंने किस तरह से उसका वर्णन किया उसको हम देखेंगे। अनंतानुबंधी क्रोध कर्म के उदय होते, जीव के अन्यथा अन्याय क्रोध होए, ये अन्याय शब्द लाला, क्योंकि जो सम्य दृष्टि है, अन्याय, अनीति और अभक्ष का त्याग होता है तभी उसको सम्य दर्शन होता है। यानी सम्य दर्शन होने के बाद क्रोध मान माया लोभ नहीं होगे वो बात नहीं, परंतु ये अन्याय वाले, अनीति वाले नहीं होगे। हाँ, उसको भी क्रोध आएगा, क्यों? क्योंकि जो धर्म से विपरीत आचरण है या देव गुरु शास्त्र संबंधी कोई विपरीतता कर रहा है तो उसका भी क्रोध आएगा, परंतु ये कौन सा अन्याय वाला क्रोध, अनीति वाला क्रोध उसके नहीं होगा। इसलिए जिसके अन्याय, अनीति आदि संबंधी क्रोध मान माया लोभ है उसको यह अनंतानुबंधी में ले लिया। अनंतानुबंधी मान कर्म के उदय होते, जीव के अन्यथा अन्याय मान होए, अनंतानुबंधी माया कर्म के उदय होते, जीव के अन्यथा अन्याय माया होए, और अनंतानुबंधी लोभ कर्म के उदय होते, जीव के अन्यथा अन्याय लोभ हो। अब यहाँ इन अनंतानुबंधी कर्मों के तीव्र उदय होते, अभी ये अनंतानुबंधी क्रोध माया मान माया लोभ है, उनके भी कभी तीव्र उदय होगा कभी मंद होगा, यानी जीव के तीव्र कषाय होगे कभी मंद होगा, है तो मिथ्या दृष्टि, अनंतानुबंधी है उसके, फिर भी उसमें तीव्रता मंदता के भेद होंगे। तो कहते तीव्र उदय होने पर जीवादि तत्वन का साचा स्वरूपाचरण न हो, यानी ये भी देखो, ये तो मोहनीय कर्म का, चारित्र मोहनीय का भेद है, परंतु ये भी सच्चा श्रद्धा नहीं होने देता, सच्ची स्थिरता नहीं होने देता। हाँ, यानी वो मिथ्या तो कर्म के साथ वो मिला हुआ है, डबल एजेंट है, डबल एजेंट, श्रद्धा में भी विपरीतता करा रहा है, क्योंकि ऐसे कषाय है कि वो ठीक तरह से स्वरूपाचरण नहीं होने देते, स्वरूपाचरण अपने स्वरूप में स्थिर होने रूप आचरण नहीं होने देता। तो कि जीवादि तत्वन का साचा स्वरूपाचरण न हो, अपने हितहित को न समझे, कोई उसको हित की बात भी समझाना चाहे तो भी वो हितहित का उसके विवेक नहीं है सकेंगे। विषय कषाय के कार्यन की अमर्यादिक वांछा हो, इंद्रियों के विषय संबंधी जो कुछ बस इच्छाएं होती रहे, वो ये करो, वो करो, वो करो, ये भोगो, वो भोगो, इसको कहेंगे अमर्यादिक वांछा। विषय कषाय के कार्यन विषय स्वच्छंद प्रवर्तन, धर्म प्रवृत्ति की वांछा न हो और जो हो तो अन्यथा धर्म प्रवृत्ति करे। धर्म प्रवृत्ति कर हमने अन्य मती भी देखते हैं, परंतु ये कैसे सब विपरीतता चलती रहती सब। अब आगे देखते हैं, ये अनंत अनुबंधी की बात हो गई, विपरीत अन्यथा नहीं विपरीत, यानी विपरीत धर्म प्रवृत्ति करे। विपरीत धर्म प्रवृत्ति कैसे, कोई हिंसा करके धर्म मनाएंगे, और भी जो कुछ अलग अलग हम देखते हैं अन्य मतियों की बात क्या क्या चल रही है। बहुरी अप्रत्याख्यान कर्म के उदय होते, ये पहला गुणस्थान है ना, कौन से कषाय का उदय है, चारों का है, जहाँ अनंतानुबंधी है वहाँ अन्य तीन है ही है। अब अप्रत्याख्यान कर्म के उदय होते चारों ही अव्रत कषाय भावन रूप प्रवर्ते, परंतु द्रव्य क्षेत्र काल के विचार सहित न्याय रूप प्रवर्ते। अभी अनंत अनुबंधी का उदय नहीं है, परंतु अप्रत्याख्यानादि है, वहां मुख्य नाम इसको लिया, यानी चौथे गुणस्थान की बात करेंगे। अप्रत्याख्यान कर्म का उदय चल रहा है, और ये कैसे ही अव्रत कषाय भाव है, ये व्रत के परिणाम नहीं है, इसको अव्रत कषाय कहा। क्रोध मान माया लोभ है वो अविरत रूप से चल रहे हैं, यानी अव्रती रूप से चल रहे हैं, इसका नाम क्या अव्रत है, परंतु वो व्रती नहीं है, फिर भी द्रव्य क्षेत्र काल के विचार सहित न्याय रूप प्रवर्ते। ऊपर कैसा अन्याय रूप नाम डाला था, अनंत अनुबंधी के उदय में अन्याय शब्द डाला था, और यहाँ कैसे है, भले क्रोध मान माया लोभ हो रहे हैं, परंतु उसको विवेक है, द्रव्य क्षेत्र काल का विवेक है, और भाव तो वो कषाय भाव में लेना उसको, इसलिए भाव को छोड़कर अन्य तीन को ले लिया, और न्याय रूप प्रवर्तन चलता है। अप्रत्याख्यान क्रोध कर्म के उदय होते जीव के न्याय रूप मर्यादिक क्रोध है, वहां कौन सा लिया था, अमर्यादिक शब्द डाला था, वो लिखा ना विषय कषाय के कार्य की अमर्यादा वांछा में, वो मर्यादा यानी उसको मर्यादा ही अनलिमिटेड, इसलिए अनंतानुबंधी नाम डाला उसका, यानी किसी के प्रति क्रोध आया तो भवन तक चले, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति वो क्षमा भाव रूप नहीं होता, अनेक वर्षों तक चले, अनेक भवन तक भी चले, इसको कहेंगे अनंतानुबंधी वाला। और यहाँ कैसे अभी मर्यादिक क्रोध,
द्रव्य माने क्या लेना, जैसे क्षेत्र और काल का तो समझ में आता है, लेकिन द्रव्य माने समझ में नहीं आता, माने आपने बताया काल में माने बहुत काल तक नहीं चलेगा इसको और उसको चलेगा,
नहीं उसके काल से, काल के विचार से, द्रव्य क्षेत्र काल के विचार से, यहाँ यह द्रव्य क्षेत्र काल का विचार यानी बाह्य में जो है वो द्रव्य क्षेत्र काल ऐसा लेना, द्रव्य में कौन सी वस्तु वगैरह इस संबंध में, ऐसा जो हम चतुष्टय रूप द्रव्य क्षेत्र काल भाव लेते हैं जीव के या पुद्गल के, वैसा नहीं लेना इसका, हम कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल का विचार सहित प्रवर्तन चलता है, यानी बाह्य जो कुछ बातें हैं उसकी बातें हैं, यानी क्रोध कर्म के उदय होते और प्रत्याख्यान के न्याय रूप एक बात, और दूसरा विशेषण क्या लिया, मर्यादिक। अभी उसको इसको कहते उसका वासना काल 6 महीने से ज्यादा नहीं होता, यानी किसी के प्रति वो क्षमा रूप नहीं भी प्रवर्ते तो भी अधिक से अधिक कितने काल तक उसके प्रति वो रहेगा, उसका वो जैसे कोई अनगमा भाव या तो कहते 6 महीने, उससे ज्यादा नहीं, यदि अनंत अनुबंधी का होगा तो कितने सालों तक चलता रहता, अमर्यादिक है उसका। अप्रत्याख्यान मान कर्म के उदय होते जीव के न्याय रूप मर्यादिक मान हो, अप्रत्याख्यान माया कर्म के उदय होते जीव के न्याय रूप मर्यादिक माया होए, और अप्रत्याख्यान लोभ कर्म के उदय होते जीव के न्याय रूप मर्यादिक लोभ होए। अनंतानुबंधी वाली तो अमर्यादित लोभ है, उसकी कोई लिमिट लेस है, पूरी दुनिया की संपत्ति मिले तो भी हाँ, और ऐसी कितनी दुनिया चाहिए उसके। और अप्रत्याख्यान कर्म के उदय होते एक देश संयम भी नहीं धरी सके, क्या कहते हैं एक देश यानी पार्शल, जो हाँ एक देश यानी पार्शल यानी थोड़ा अनुव्रत भी धारण करने के इसके परिणाम नहीं है, परंतु धर्म विषय रुचि हो, ये चौथे अनुष्ठान वाले की अपेक्षा बात चल रही है। धर्म और धर्म के धारक विषय भक्ति हो, धर्म यानी मोक्ष मार्ग जो है, और धर्म के धारक यानी जो समय दृष्टि है, व्रति है, मुनिराज है, देव है, उनके प्रति भक्ति हो, प्रीति हो और साचा स्वरूपाचरण हो। ऊपर लिखा था ना, साचा स्वरूपाचरण न हो। स्वरूपाचरण यानी अपने स्वरूप का अनुभव चलता है, उसमें स्थिरता होती है। ये तो चौथे अनुष्ठान वाले का वर्णन हुआ। बहुरी प्रत्याख्यान क्रोध कर्म के उदय होते, अभी वो जीव पांचवे गुणस्थान वाला है, उसको अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान नहीं है, प्रत्याख्यानावरण का उदय चल रहा है, उसके मुख्यता से बात चलेगी। जीव के तुच्छ सा न्याय रूप क्रोध है, तुच्छ सा कहा, ऊपर मर्यादिक क्रोध कहा था और न्याय रूप लिखा था, यहाँ न्याय रूप तो है तो मर्यादिक में भी बहुत अल्प सा है तो तुच्छ सा लिखा, हाँ नहीं के बराबर। प्रत्याख्यान मान कर्म के उदय होते हैं, जीव के तुच्छ सा मान हुए, प्रत्याख्यान माया कर्म के उदय होते, जीव के तुच्छ सी माया होए, और प्रत्याख्यान लोभ कर्म के उदय होते, जीव के तुच्छ सा लोभ हो। ये तो हम ये तो देशव्रति की बात है। और प्रत्याख्यान कर्म के उदय होते, सकल चारित्र तो न धर सके, क्योंकि मुनि योग्य चारित्र तो इसके नहीं है, परंतु देश संयम के सकल भेदन को प्राप्त हो। सभी भेद कितने हैं? हाँ 11 प्रतिमाएं हैं ना, तो ये सभी भेदों को प्राप्त हो सकता है। प्रत्याख्यान उनका उदय चल रहा है तब तक, तो जितनी स्वरूप स्थिरता होगी बाह्य में भी वैसे वैसे उसके सहज रूप से प्रतिमा धारण करने के भाव होंगे, यानी उसके अंतरंग स्थिरता, उसके शुभराग और वैसा बाह्य आचरण, तीनों का ही सुमेल होता है। ऐसा नहीं कि हमने अंतरंग इतनी स्थिरता की बाहर चाहे जैसा परिणाम हो, चाहे जैसा वर्तन हो, ऐसा नहीं होता। बहुरी संजोलन क्रोध कर्म के उदय होते, जीव के अबुद्धिपूर्वक कार्य रहित मंदतर क्रोध पर, कार्य रहित है नहीं, उसके कुछ क्रोध के कारण ऐसा कुछ बाह्य में कारण कार्य हो जाए ऐसी नहीं होता, परंतु वहां उसका उदय भी चल रहा है। संज्वलन मान कर्म के उदय होते, जीव के अबुद्धिपूर्वक कार्य रहित मंदतर मान हुए, मंदतर शब्द लगा, ऊपर तुच्छ लिखा था। संज्वलन माया कर्म के उदय होते, जीव के अबुद्धिपूर्वक कार्य रहित मंदतर माया हुए, और संज्वलन लोभ कर्म के उदय होते, जीव के अबुद्धिपूर्वक कार्य रहित और मंदतर लोभ होए। यानी संज्वलन मोह कर्म के उदय ते सकल चारित्र तो धरे, यानी मुनि योग्य चारित्र चल रहा है, परंतु उत्तर गुणन में दोष लागया करे, यानी जो श्रेणी आदि में जो होते हैं, यथाख्यात चारित्र का अभाव है, जो 11वें 12वें में जाकर पूर्ण वितराग होने पर होता है, वैसा इसके नहीं है, कुछ सूक्ष्म यहाँ दोष चल रहा है। अब यहाँ रुकेंगे हम, बाकी 9 कोशांग की बात इससे लौट कर आएंगे, तब देखेंगे। तब तक ये क्रोध मान माया लोग करते रहे ना, हाँ पढ़ते थे ना।
जवानी के ज्ञान पे सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तक नो सदा देत हो।